हरे कृष्ण ज्यादा अच्छा है, सुनाई दे रहा है पीछे क्लियर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कौन सा अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब बोलिए हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
अब थोड़ा सा छोटा सा चर्चा करेंगे आपके साथ, सब तैयार हो सुनने के लिए? पीछे भी तैयार है सब? हमारे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम ज्ञान चिन्नान्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति स्वापदातिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतभाव श्रीवासदेवोभक्तवृन्द। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So, आज हम भक्तों ने तीन तीन गोल लड्डू गोपाल, तीन तीन लड्डू गोपाल का अभिषेक किया था। किनके किनके थे लड्डू गोपाल? अशोक जी,
एक मोहन सिंह को, डॉक्टर सतीश को।
मोहन सिंह जी कहाँ पर है?
मोहन सिंह जी प्रभु,
अच्छा
इनका घर में ही प्रोग्राम हो रहा है, इनका घर का ही प्रोग्राम हो गया। आप इधर।
सो और एक शालिग्राम भी थे
शायद,
अशोक प्रभु। अच्छा, तो लड्डू गोपाल का जो विग्रह है विशेष करके कई भक्तों के घर में देखा जाता है। बोलो शांति से बात करें। कई बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म तो जन्माष्टमी के दिन होता है, आपने अभी भी उनको नहला दिया, अभी भी स्नान हो गया उनका। लेकिन गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि है नरसिंह मेहता, जो भगवान के भक्त थे, ऊंची कोटि के, उन्होंने अपने काव्य में एक जगह लिखा है, नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार। आप शायद सुना होगा, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार। वो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते और वो चाहते हैं कि उनका बार बार जन्म हो। क्यों ऐसा चाहते हैं? कलयुग में कौन चाहेगा ऐसा, बार बार जन्म हो। इस जन्म में ही हमारे नाक में दम रह गया है तो बार बार जन्म लेने के लिए तो कौन चाहेगा, है ना। लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, किस लिए? भोग करने के लिए ना। नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव, निरखवा उसका उसमें भाग लेने के, उसका लाभ लेने के लिए। निरखवा नंद कुमार, किसका कीर्तन? नंद कुमार जो नंद महाराज का बेटा है उनका कीर्तन। तो कलयुग में कोई व्यक्ति ये चाहता नहीं कि उसका जन्म बार बार हो। कलयुग में आप में से कई यहाँ पर उपस्थित लोग जो है, आप में से कई बुजुर्ग भी है ना। मैनी ऑफ योर एजेड, सो आप अपने अनुभव से बताइए कि जब आपकी जवानी की अवस्था थी 20, 30, 40 साल पहले, तो समाज की स्थिति आज से अच्छी थी? आज से जीवन जो था वो शांति वाला था, या इतना ही धोखाधड़ी हिंसा जितना आज बढ़ा हुआ है उतना पहले कम था या ज्यादा था? कम था ना। लोग आज जितने स्वार्थी है, क्या लोग पहले उतने स्वार्थी थे? आज जिस तरह से लोगों का जीवन तेजी से दौड़ रहा है, क्या पहले आप ऐसा देखते थे कि ऐसा तेजी से दौड़ रहा है? हम देखते हैं दिन ब दिन, अब देखो कितनी तेजी से भाग रहे लोग, तेजी से, फास्ट लाइफ, एवरीथिंग इंस्टेंट है ना। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए सबको, खाना भी इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। कौन बनाएगा, कुकिंग कौन करेगा, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए एकदम फटाफट, किसी को बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन परिणाम क्या होता है, ये इंस्टेंट के चक्कर में लोगों की मन की शांति चली गई है ना। हम क्या देखते हैं, लोग के पास सुविधाएं हैं, आईफोन है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे कंप्यूटर है, लेकिन मन की शांति नहीं है। लोग अधिक से अधिक परेशान हो रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे लोग दिन ब दिन और परेशानी का सामना कर रहे हैं, है ना। आप शास्त्रों में पढ़ते हो श्रीमद् भागवतम में, पदम पदम यद विपदाम निदेशा, ये भौतिक संसार जो है इसके हर कदम पर क्या मिलेगा आपको? विपदा, प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स की कोई कमी है क्या? हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो? कोई है ऐसा? नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। तो कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी ये तो कैसे संभव है, प्रॉब्लम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये संसार का नियम है, एक प्रॉब्लम को आप ठीक करने जाओगे, सामने आपके 10 प्रॉब्लम खड़े हैं, हाथ जोड़कर सर हम भी आपकी सेवा करने तैयार है। अनेक प्रॉब्लम है ना। कभी देखा जाता है आपका सिर में दर्द है। मैं भी यहाँ पर आ रहा था, किसी भक्त का फोन आ गया, अचानक से बहुत पेट में दर्द हो रहा है। बोले लाइफ में कभी हुआ था पहले? बोले नहीं कभी नहीं हुआ था। तो मैंने यहीं पर फोन किया, आपके डॉक्टर साहब को फोन किया पूछने के लिए, मैंने कहा कोई इलाज करो। तो प्रॉब्लम, सिर पे प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम है ना। हम में से कितने लोग हैं जो 100% हेल्दी है? कोई है ऐसा? एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं यहाँ पर उपस्थित कि जो 100% हेल्दी हो, एक भी व्यक्ति नहीं है ना। किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का डायबिटीज है, किसी का गाउट्स है, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का डाइजेशन वीक है, किसी का वो प्रॉब्लम है ना। हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। और इतना सब कम नहीं होता है तो सरकार टैक्स डाल दीजिए, बोले आप घर में प्रसन्न रह सकते नहीं तो बाहर आपको कैसे प्रसन्न रखेंगे हम, तो टैक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है कि घट रहा है, हालांकि सरकार चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप कितना भी अच्छा करो, हाँ सरकार अच्छा काम है, लेकिन टैक्स देने की बात आती तो सबके मुंह चढ़ जाते, है ना, सीधी सी बात है, कौन कौन पसंद करेगा टैक्स देना, तो कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। तो दिन ब दिन एक ही, कल देखो कल या परसों एक ही दिन में पूरा शेयर मार्केट डाउन हो गया, एक ही दिन में, ना? जैसे अनाउंसमेंट हुई वो लॉन्ग टर्म में डालेंगे टैक्स, खत्म हो गया बात, सब लोग परेशान। तो ये समस्या वो समस्या, इसके अलावा फैमिली की प्रॉब्लम्स, अरे वो भाई उससे हमारा झगड़ा हो गया है, उससे हमारी बात नहीं हो रही है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, इसको छोड़ दो घर में नलके में पानी नहीं आ रहा है, हमारी गाड़ी में इंजन खराब हो गया है, ये सब प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के विषय में जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, उतने प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं। कितनी लहरें आती समुद्र में, निरंतर आती रहती है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। उस तरह से हमारे लाइफ में अनेक प्रॉब्लम आते हैं, और फिर अगर आपको कोई बोल रहे हरी ना जन तो मुक्ति ना मांगे मांगे जन्म जन्म होता आपको बोल दे भाई आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इसी अहमदाबाद में चलेगा अरे प्रभु जी ये कहाँ पर ला के रख दिया हमें, हम और भी परेशान है, इतना कम परेशानी है। लेकिन परेशानी जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। भगवान ने यहाँ पर ये सृष्टि का निर्माण किया तो उस सृष्टि का निर्माण करने के बाहर जो गेट के ऊपर बोर्ड लगाते हैं ना, एक गेट के ऊपर बोर्ड जैसे एंट्री है, जहाँ पर एम के बंगलोज का बोर्ड लगा हुआ था बाहर, जब मैं आया तो बोले ये एम के बंगलोज है बोर्ड लगा हुआ है, तो ऐसे इस सृष्टि के एंट्रेंस पर बोर्ड लगा हुआ है दुखालयम ऐसा बोर्ड लगा हुआ है दुखालय, इसमें इस भी इसके भीतर जाओगे इस एंट्रेंस में जाओगे तो केवल दुखी दुख मिलेगा, दुखी दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई कहेगा ना कोई बात नहीं दुख मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे सब साथ में रहने चाहिए, मेरे परिवार के लोग पैसा वगैरह सब साथ में रहना चाहिए। तो भगवान ने वो दूसरा सेकंड वर्ड डाल दिया उसके बाद अशाश्वतम, भगवान बोले कि नहीं वो भी नहीं संभव है, दुखालय तो है लेकिन साथ में अशाश्वत भी है, वो रहेगा नहीं हमेशा तुम्हारे साथ। तो ये संसार में कहीं पर भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आप कहेंगे क्या बात करते प्रभु यार, देखो कभी टीवी ऑन करके देखा आपने कितना आनंद आता है, आपको क्या बता, आप कभी टीवी देखते ही नहीं, कभी आपने कभी कोई स्पोर्ट्स मैच देखा, कोई वर्ल्ड कप फाइनल देखा है आपने, तो आनंद ही आनंद है संसार में। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य सोचता है जो कष्ट है उसको सुख मान रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते श्रीमद् भागवत में नैव द्विजय पर दुरत्य वैतरण्यास तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त। नरसिंहदेव जो कि पिलर से प्रकट हुए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, तो प्रहलाद महाराज कहते थे जब प्रहलाद हृदय कृष्ण को वध किया तो प्रहलाद ने भगवान से शरण ली, तो भगवान ने कहा नरसिंहदेव ने प्रहलाद मांगो क्या वरदान चाहिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद ने कहा आपने मुझे क्या व्यापारी समझा है, मेरा व्यापार नहीं है कि मैं भक्ति करूँ और उसके सामने कुछ परिणाम मांगूंगा कुछ फल मांगूंगा। आजकल तो हम लोग क्या हमारे पास लिस्ट होती है, जब मंदिर जाते हैं तो आंखें बंद करके पूरी लिस्ट पढ़नी होती है कि ये भी दे देना वो भी दे देना वो बाकी रह गया वो भी कर देना वो भी कर देना, वो पूरा लिस्ट हम पढ़ लेते हैं। प्रभु जी ये लोग क्या बोलते हैं उसको रूप धर्म देही रूपम देही रूपवती भाजा देही सुख शांति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बोलो अभी मन की प्रॉब्लम की बात ही नहीं हुई तन की बात हो रही है। तो इतनी सारी लिस्ट होती है हमारी, ये भी समस्या सॉल्व कर देना वो भी कर देना ठीक है, बच्चा होगा स्टूडेंट होगा बोले एग्जाम में पास करा देना, कोई व्यापारी होगा बोले मेरा बिजनेस साइन करा देना, कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करा देना। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लिस्ट होती है हमारी, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मैं आपकी सेवा के सामने और कुछ नहीं चाहता। केवल हम भक्ति में जुड़ते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। भगवत गीता भगवान कहते हैं क्या, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग का वर्णन हुआ है भगवत गीता। एक तो वो व्यक्ति जो कि दुखी है, जो कष्ट में है, हे प्रभु मुझे, मैं बड़े कष्ट में हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सुखी कीजिए, इस प्रकार से वो व्यक्ति आता है दुख में। तो जैसे हमें इसका उदाहरण प्राप्त होता है, जब गजेंद्र जो था हाथी, एक बार ऐसा हुआ था कि गजेंद्र का युद्ध हुआ था एक मगरमच्छ के साथ, और गजेंद्र जो था वो भूमि का प्राणी है और मगरमच्छ जो है वो जल का प्राणी है ना। लेकिन जब अपने सहयोगियों के साथ ये हाथी गजेंद्र स्नान करने गया तो वहाँ पर मगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा और उन दोनों के बीच में युद्ध रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मगर का जो शक्ति था वो बढ़ता गया और हाथी गजेंद्र का जो शक्ति था वो कम होता गया, क्योंकि वो पानी का प्राणी नहीं है। जब गजेंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा, वो अपने प्राण से हाथ धोने ही वाला था, तो उसने प्रार्थना की, भगवान को बुलाया, मेरी रक्षा कीजिए, दुखी था। तो उन्होंने क्या किया, नद पानी में से एक कमल का पुष्प उठाया अपने नाक से और उठा करके आंखों में पानी से बड़े प्रेम से हृदय से भगवान नारायण को बुलाया। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम पलातर। भगवान कहते हैं अगर कोई मुझे केवल पत्ता ही दे दे, पत्रम पुष्प, कोई एक फूल दे दे, हाँ मुझे कोई फल दे दे, ऐसा नहीं बोले कि कोई विदेशी फल लेके आना, ऐसा नहीं बोले कि नलके का पानी नहीं पीता मैं, बिस्लरी का चाहिए, भगवान ऐसा नहीं कहते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कोई जिस प्रकार से हम अपने पास जो कुछ भी है वो भगवान के चरणों में समर्पण करता है, तो भगवान उसकी भक्ति को देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो क्या दे रहा है, वो भगवान देखते हैं कि वो किस प्रकार से दे रहा है, किस भाव से दे रहा है ना। सबसे बड़ी बात यही है, हम भगवान को क्या देते हैं इससे भगवान कोई, भगवान के पास किस चीज की कमी है, उनके पास तो सब कुछ है। कई बार हम मंदिर में नए नए जब भक्त जुड़ते हैं, मंदिर में डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो भगवान पहले दिन तो देखते हैं कितना दिया, कितना डोनेशन दिया, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब डोनेशन देते हैं तो फिर भगवान ये नहीं देखते कितना दिया, भगवान देखते कितना रखा उसके पास। कई बार होता है ऐसा, एक व्यक्ति था जिसने, ये था साउथ इंडिया में, एक तिरुपति के पास गया था, बालाजी के पास, तो बालाजी के पास जाकर के प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा एक बिजनेस डील है, मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे आप 10 लाख रुपए दे देना, तो उसमें से 5 लाख में आपको दे दूंगा, 5 लाख में तुम्हें दे दूंगा, आधा आपका 50-50, 50% तुम्हारा, 50% मेरा, लेकिन मुझे ये डील साइन करवा दिए, 10 लाख रुपीज़ का औसत से जरूरत है मुझे, तो 10 लाख रुपए। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को मुनाफा हुआ, डील साइन हुआ, लेकिन 10 के बदले 5 लाख का ही हुआ, उसको 5 लाख ही प्राप्त हुए। तो वो तो बड़े मन से चैन से शांति से बैठा था, गया भगवान के पास एक बार दर्शन करने, फिर से बालाजी के पास, बालाजी पूछे क्यों भाई क्या हुआ, तुम्हारा पैसे का तुमने रिक्वेस्ट किया था, मैंने तो दे दिया ना पैसा तुम्हें, तो बोले हाँ तो बोले दिया तो सही, लेकिन अभी क्या, तुमने अपना 5 लाख पहले ही ले लिया अपने पास। मुझे 5 लाख ही दिया। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, यू नो। तो तीन प्रकार के लोग एक बार इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग भगवान को बहुत दान करते हैं, यू नो, हमारा हृदय बहुत बड़ा है। तो तीन लोग जो थे, तो उसमें से एक ने कहा, अच्छा तो कैसे होता है, कैसे करते हो तुम? अरे कुछ नहीं, हमारे पास जो कुछ धन होता है, जो सिक्के होते हैं धन का वगैरह, जो कुछ हमारे पास होता है, हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, गोल बनाते हैं भूमि के ऊपर, यू नो, और जितना गिरेगा, यू नो, जितना उसके अंदर गिरेगा वो भगवान का, और जो बाहर गिरेगा वो सब हमारा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास वो उससे भी गया हुआ था, तो उसने एक छोटा सा गोल बना हुआ, बोले जितना इसके अंदर गिरेगा उतना भगवान का बाकी। और तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि हम तो गोल नहीं बनाते। तो फिर आप क्या करते हो? बोला हम तो ऐसे ही उठाते, ऐसे ही उछालते ऊपर, गोल नहीं बनाते मुझे। तो बोले क्या सब कुछ भगवान का? बोले ना ना, ऐसा थोड़ी है। तो कैसे? बोले गोल की क्या आवश्यकता है, हम उछालते ऊपर आकाश में, बोलते भगवान को जितना रखना है रख लो, बाकी से बनाओ। तो इस प्रकार के लोग होते हैं कि जो भगवान के साथ सौदाबाजी करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इस प्रकार के भक्त नहीं थे। प्रहलाद महाराज जो थे वो उत्तम कोटि के भक्त थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। तो फिर क्या कहा, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मांगो क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नहीं वो द्विजे पर दुरते वैतरण्यास तो द्विधिकायन महामृत मग्न चित्त। हे प्रभु, मैं उद्विग्न नहीं हूँ मेरी स्थिति को लेकर के। नहीं वो द्विजे पर दुरते, मुझे वैतरणी नदी का भय नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मेरा मन जो है वो आपके कीर्तन में, आपके नाम में लग चुका है, आपके शरण में मेरा मन लग चुका है, इसलिए मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे हमेशा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो आगे कहते हैं दूसरे लाइन में, सोचे ततो विमुख चेतसा। सोचे, मैं शोक कर रहा हूँ किन लोगों का? सोचे तथा विमुख चेतसा, जो आपसे विमुख हो चुके हैं, जो आपको भूल चुके हैं, जो आपके शरणागत नहीं हो रहे हैं, जो भगवान के शरण में नहीं है, विमुख चेतसा। और करते क्या है ये लोग? इंद्रियार्थ, अपने इंद्रियों की तृप्ति के पीछे पड़े हैं। इंद्रियार्थ और माया सुखाया, अपने माया सुख में। माया सुख जानते हो किसको बोलते हैं? माया का अर्थ होता है जो नहीं है वो, यू नो। जैसे समझ लो आप कभी हाईवे पे जाते हो तो आपको सड़क पर पानी दिखाई देता है। आपने कभी देखा है दूर दूर सड़क पर कभी पानी जैसे दिखता है? देखा है आपने? क्या बोलते हैं उसको? मृगजल। हाँ, मरीचिका, मृगजल, है ना, दूर से दिखता है ना। लेकिन क्या आप पास में जाते हो तो क्या होता है? पानी होता ही नहीं है, है ना। तो इस संसार में बिल्कुल उसी प्रकार से होता है कि हम देखते हैं, हम सोचते हैं यहाँ पर सुख है, लेकिन जब उसको ग्रहण करते हैं, अरे ये तो धोखा हो गया, यहाँ पर सुख नहीं था। कोई बात नहीं, हम और कहीं प्रयास करते हैं, और कहीं प्रयास करते हैं, अरे यहाँ पर फिर से धोखा हो गया। और इसी तरह से हमारा जीवन बीतता जाता है, हमारा पूरा जीवन इसी संघर्ष में जाता है। इधर से सुख मिलेगा, उधर से सुख मिलेगा, लेकिन परिणाम आता है कहीं से भी सुख नहीं प्राप्त होता। माया सुखाया, ये माया जो असली में होता नहीं है, दिखता है ऐसा, माया सुखाया। भर्मो द्वहतो विमूढ़ान, भर्मो का अर्थ होता है उठा रहे भार। भर्मो द्वहतो, वहन कर रहे हैं, वहन कर रहे, उठाना। भर्मो द्वहतो विमूढ़ान, बड़ा भार वहन कर रहे हैं मूड बन करके, विमूढ़ान। ये मूड लोग जो इंद्रिय सुख, जो सुख की स्थिति को, दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इंद्रियार्थ माया सुख, ये तो माया सुख किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके साथ साथ जैसे आंखें कहती है आपको हम सब प्रकार की गंदी चीजों को देखना, तो आंखें उसकी उसकी दिशा में दौड़ती है। कान कहेगा सब प्रकार का आला वो प्रलाप सुनना, तो वो भी इंद्रिय तृप्ति है। नाक कहता है सब प्रकार की सुगंध, जीवा कहती है जो भी मन में आओ खाएंगे, यू नो। शरीर कहता है कि हमें शरीर का सुख चाहिए, यू नो। तो इस तरह से सब इंद्रियां हमें धक्का मार रही है जोर जोर से, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सब इंद्रियां कह रही है, मन कह रहा है, इंद्रियां कह रही है, हम सब, यू नो, क्या बोलते भगवान भगवद गीता में कहते हैं, इंद्रियों का स्लेव, दास बन जाता है वो। जो व्यक्ति इंद्रियों के आदेशों का पालन करता है वो इंद्रियों का दास, चाहे भले वो अपने आप को भगवान मानता हो। ज्यादातर लोग अपने आप को मानते हैं कि भाई आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, जो मैं सोचता हूँ। भगवान क्या धर्म की स्थापना करेंगे, मैं खुद ही धर्म की स्थापना कर सकता हूँ। जो मैं सोचता हूँ मेरा धर्म है, तुम सोचते हो तुम्हारा धर्म हो गया ना भगवान। तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, जो मैं सोचता हूँ वो सबसे उत्तम है, इस उम्र में क्या तुम मुझे सिखाओगे। अरे भाई भगवान तो आपको किसी भी उम्र में सिखा सकते है ना। भगवद गीता सब प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सब प्रकार के लोगों के लिए भगवद गीता है। और भगवद गीता का जो संदेश है वो सनातन संदेश है, आने वाली हजारों हजारों पीढ़ियों तक ये संदेश बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो इंद्रिय सुख में जब हम लग जाते हैं तो गधे की तरह बड़ा भार उठाते हैं, वहन करते भार। क्या बोलते हैं, जड़ विद्या जत माया रो वैभव तुम्हार भजन बाधा। जो जड़ विद्या हम प्राप्त करते हैं ना, जड़ विद्या ये MA PhD वगैरह, वो जड़ विद्या, हालांकि उसका कोई इतना महत्व नहीं है। हम सोचते हैं, जनरली आप सोचो, अगर कोई विद्यार्थी को जाके ये बोल दे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में कि तुम कितना भी डिग्री लो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें सब्जी बेचने का ही धंधा करने का है, तुम्हें को और कुछ नहीं मिलने वाला है, साइकिल ही चलानी है बस, और कुछ नहीं करने का, चाहे तुम कितनी भी डिग्री, तो पढ़ेगा क्या, पढ़ेगा वो 100% नहीं पढ़ेगा। ये नहीं सोचेगा चलो डिग्री तो रखते फिर करेंगे कुछ भी धंधा, ना नहीं करेगा वो, ऐसा कोई धंधा नहीं करेगा। सब लोग पढ़ाई करते एक ही उद्देश्य से, क्या, धन की प्राप्ति, मुझे अच्छा धन मिलना चाहिए बस, बाकी पढ़ाई कौन करेगा। आज के समय में पढ़ाई किसको करना है ना, आप में से कोई स्टूडेंट है क्या, आप पढ़ाई अच्छा लगता है करना पड़ता है करते है ना, शर्म आएगी ना कैसे बोले नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आप उनको पूछोगे, मन से पूछोगे, किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद है पढ़ाई है ना। लेकिन लोग करते हैं इस आशा के साथ कि हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त होगा। लेकिन भक्ति ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या जत माया वैभव, ये माया का वैभव है। अच्छा से एक बार लेक्चर में बता रहे थे, PhD एक भक्त ने मुझे बताया, एक लड़का था PhD कर रहा था, मैंने कहा तुम PhD कर रहे हो, अरे प्रभु जी क्या बात कर रही है, लगा पढ़ा हूँ PhD के अंदर इतना दिमाग खराब हो रहा है, तो बोले मैंने तो बोले PhD का फुल फॉर्म ही बदल दिया। तो मैंने अच्छा क्या फुल फॉर्म बनाया तुमने, बोले PhD जो भी हो मेरा फुल फॉर्म तो एक ही है, परमानेंटली हेड डैमेज, जिसका मस्तक परमानेंटली डैमेज हो गया हो वो PhD करता है ऐसे। हालांकि वो परेशान था बहुत, तो कह रहा था। लेकिन ये जड़ विद्या जो तो माया वैभव तुम्हारे भजन बाद, आपको भगवान का शरण नहीं लेने देगी, शरण नहीं लेने देगी। और क्या करेगा, अनित्य संसार मोह जन्माया, आपको इस अनित्य संसार में मोह क्रिएट करेगा, मोह जन्माएगा। मोह क्या है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा संप्रदाय है, ये मेरा समाज है, ये अगर किसी ने फिल्म को रिलीज कर दिया तो हंगामा मचा देंगे हम। हो गया था ना अभी आपके इस एरिया में, कुछ नहीं हुआ था ना, हमारे एरिया में हुआ था। अब हम जहाँ पर रुके थे इस्कॉन मंदिर, अब मंदिर से ही तो शुरू हुआ था। इस्कॉन मंदिर से ही तो लोगों ने धमाल करना शुरू किया था, लेकिन खबरदार इस फिल्म को रिलीज किया तो हम पूरा आसमान जमीन एक कर देंगे। तो क्या है, ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है, ये भारत देश मेरा है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं भारत देश का हूँ। तो ये सब शरीर से जुड़ी हुई भावना है, ये भावना हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है। चाहे वो एक क्षत्रिय समाज का जन्म लेने वाला, चाहे दूसरे जन्म में अमेरिका में जन्म लेगा, तो ये आत्मा जो है उसको ये न धर्म होता है न देश होता है, आत्मा के लिए वो सब समान के लिए समान भाव से देखा जाता है। तो जब व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है, तो क्या करता है, मोह उत्पन्न होता है और शरीर से जुड़ी हुई चीज को वो अपने आप खुद का पहचान लेता है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते हो संसार में सारे प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम, आप कहीं से भी किसी भी प्रकार से किसी भी कोने से कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, तो सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। क्या, आप ये समझ लो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, बस इतना समझ लो, ये ढंग से समझ लो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो सारी प्रॉब्लम का अपने आप हल हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व इमीडिएटली। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो दुखो नहीं, जीव कृष्ण का दास है ये विश्वास कर लो कि तुम्हारा काम है भगवान की सेवा करना, और तुम जीव हो, तुम ये शरीर नहीं, और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज तुम्हारी अपनी नहीं है। ये एक बार समझ लो तो क्या होगा, कर ले तो वार दुख होना है। अगर ये नहीं समझेंगे तो मेरे इलाके में मत आना, देखो वो बोल रहा है ना, बोल रहा है मेरे इलाके में मत आओ, ये मेरा इलाका है ना, बोल रहा है वो। इन लोग का फाइट जनरल इसी बात से होता है और बहुत सीरियस फाइट करते मन से करते एकदम। तो ये शरीर की भावना में जब हम जुड़ जाते हैं तो ये देखा जाता है कि हम अशांत हो जाते हैं। अनित्य संसारे मोह जन्माया जीवे के कराए गधा, जीव को गधा बना देते हैं, गधा दिन रात बोझा उठाते, दिन रात बोझा उठाती है। तो ये बोझा जो है वो कैसा बोझा है, गधा बोझा उठाता है ना, गधा बोझा उठाता है, गधे को बोझा उठाने के बदले में चाहिए क्या खाने के लिए, थोड़ा घास, वो घास उसको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी ना बोझा उठाएंगे फिर ही घास खाएंगे, है ना, है ना। कुछ गधे के विशेषज्ञों ने हमें बताया था कि गधा जो होता है वो गर्मी की मौसम में मोटा हो जाता है, और ये विंड मानसून में पतला हो जाता है। तो कोई सोचेगा ये कैसे संभव है, मानसून में तो घास सब जगह होती है ना, बारिश के समय वर्षा ऋतु में तो सब जगह घास मिलती है, तो उसको तो मोटा होना चाहिए, लेकिन गर्मी में मोटा होता है और मानसून में पतला होता है। तो इसका क्या कारण, वो विशेषज्ञ ने बताया था कि गधा गर्मी में सोचता है कि बहुत दूर मैंने चला आज, दूर दूर जाना पड़ता है ना चलने के लिए, तो बहुत दूर चला मैं आज, और चलने के बाद इतना सारा काम किया तब जाके घास खाया, देखो तब मोटा हो जाता है, आई एम सो ग्रेट। लेकिन बाद में मानसून में क्या होता है, वर्षा ऋतु में आज तो कुछ काम किया नहीं, मुफ्त का माल खा रहा हूँ ऐसे ही। तो ये सोचते सोचते बीमार हो जाता है वो। तो ये देखा जाता है कि वो गधा जो है दिन रात मेहनत करता है। आज लोग मनुष्य भी इस तरह से मेहनत करते हैं ना। मनुष्य भी देखो, एक व्यक्ति को मैं मिला था, एक जॉब कर रहा था, बोले प्रभु जी मुझे जॉब की प्रॉब्लम है। कब तुम करता रहे जॉब? बोले प्रभु जी इससे कहाँ होता है आजकल। तो मैं कहा क्या करना चाहते? बोले और एक जॉब करना चाहता। तो टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास, नहीं कर लूँगा। ठीक है चलो। तो जॉब के तो कुछ समय के बाद आया, प्रभु जी दो जॉब हो गया मेरा। अरे वाह, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर लेकिन बाद में बोला प्रभु जी दो जॉब से और एक जॉब में करना चाहते हो? अब वो तीसरा जॉब करना चाहते हो? बोले प्रभु जी समय में निकाल लूंगा कैसे निकलते। और आई एम सीरियसली, वो अभी लास्ट मंथ की बात है। बोले मैं तीन जॉब करूंगा एक साथ। कदे की तरह काम कर रहे हो तुम तो, है ना? डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, पैसा चाहिए। अब जानते हो कि जो सुख है उसका धन से कोई संबंध नहीं है, जानते हो? ये कैसे हो सकता है? सुख और धन का संबंध नहीं है। यह सुख का और धन का संबंध नहीं है ना। सुख और धन में क्या अंतर है? धन से वो सारी चीज प्राप्त कर सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, लेकिन सुख मार्केट में मिलता नहीं है ना। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन मन की शांति खरीद सकते हो नहीं। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, क्या प्रेम खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, है ना। तो सब चाहते क्या है? प्रेम चाहते हैं और सुख चाहते हैं, असली सुख चाहते हैं। और असली सुख हमें प्राप्त हो सका है भगवान के चरणों में। क्या भगवान प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? मैं मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता क्या है? जो माया सुख में लगे हुए हैं, असली सुख नहीं, माया सुख में लगे हुए हैं। तो हमें माया सुख से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौड़ा चंद्र बोले, कट निंद्रा जाओ माया पिशाची लगोले। कहते हैं कि हे जीव जागो, कब तक सोते रहोगे माया की गोद में? कब तक? हाँ प्रभु जी, ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, बस फिर करना क्या है? माला ही तो करनी है, सोना माला ही तो करना है, फिर करना क्या है? इतना प्रभु जी, बस ये बेटी की शादी हो जाए, बस ये बिजनेस ये सेटअप हो जाए एक बार, बस इतना थोड़ा पैसा कमा ले, बस 5-7 साल, बस और ये कभी नहीं होने वाला है ना। ये मन आपके साथ ट्रिक कर रहा है, आपका मन आपको ट्रिक कर रहा है, ये आपको घुमा रहा है बार बार। इसे सावधान हो जाना चाहिए, मन की बात में मत आइए। भगवान कहते हैं सदाताम कीर्तयन तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन करो, है ना। भगवान ऐसा नहीं कहा अर्जुन पहले काम करो, युद्ध कर लो फिर चिंतन करना मेरा, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। महामनुस्मर, पहले मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, महामनुस्मर फिर युद्ध करो, है ना। युद्ध जा तस्मात सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, मेरा चिंतन करो फिर युद्ध करो। अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो अर्जुन, है ना। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कह रहे, आप अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, लेकिन कैसे? मेरा चिंतन करते हुए, मेरी खुशी के लिए करो। जब व्यक्ति कोई भी कार्य अपनी खुशी के लिए करता है, उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा 100%। लिख के आप लिख लो, अपने घर में जाकर लिख लो, जब कभी भी आप अपनी खुशी के लिए कोई भी कार्य करोगे, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा ही होगा, गारंटी है। क्योंकि हमारी खुशी भगवान की खुशी में निहित है ना। जैसे समझ लो कि फैन है आपके सामने, पंखा है, ये फैन अभी बंद है, इसको चल नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद है, और सप्लाई उसका बंद करके रखा हुआ है, यू नो। लेकिन जब तक ये सप्लाई ऑन नहीं, तब फैन का क्या वैल्यू? क्या फैन का काम क्या है? हवा देना, लटकना तो है नहीं, है ना। लटक तो सब लटकते हैं, लेकिन हवा तो पंखा ही देता है ना। तो
ये पंखा जो है वो तभी काम में आता है, तभी उसका महत्व है जब वो हवा देता है, लेकिन उसकी सप्लाई बंद कर दी, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी, तो उसका क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं है। जब उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा, उसका लिंक होगा, जुड़ेगा वो अपने पावर से, तब वो अपना पराक्रम दिखाएगा, तब वो अपने कार्य को दिखाएगा। ये उंगली जो है अगर ये शरीर से निकाल दी जाए तो इसका क्या अपना कोई महत्व है? इसको काट दिया जाए तो कोई महत्व है? लेकिन अगर वो उंगली को जोड़ दिया जाए तो उसका महत्व है ना। तो हम भगवान से विमुख हुए जीव है, इसलिए अगर हम स्वतंत्र सुख भोगने का प्रयास करेंगे तो वही यू नो इलेक्ट्रिक सप्लाई का बिना सप्लाई बिना का पंखा है और टूटी हुई उंगली है, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा महत्व तब होता है। योग जो है, योग शब्द कहाँ से आया? योग शब्द जोड़ने का काम करता है। योगा का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। आजकल जो योगा कर रहे हैं वो तो केवल स्वास्थ्य के लाभ के लिए हो रहा है, इंद्रिय तगड़ी करो और ज्यादा भोग कर सकते हो, ये बीमारी हटाओ वो बीमारी हटाओ। क्यों हटाओ? भोग करना है, इंद्रिय भोग करना है, इसलिए ठीक है। वो योगा हठ योग में आता है, लेकिन वास्तविक जो योग होता है वो होता है भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करना, ये वास्तविक योग है। तो सभी योगियों में, सभी योग में कौन सा योग सबसे श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, योगिना सर्वेशम मद गति अंतरात्मना। सभी योगियों में वो भक्त योगी सबसे श्रेष्ठ है जो भक्ति योग के माध्यम से मेरे चिंतन में जुड़ा हुआ है। ये भगवान का अपना वचन है, तो हमें भक्ति योग को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति योग में मेरी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। आपकी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आप सोचिए क्या मनुष्य जन्म बार बार मिलता है? आप सोचिए आपके पास जो समय है, जो बह गया है समय, उसको आप वापस ला सकते हो? शाण के पंडित क्या कहते हैं, आयुष्य नाम आयुष्य क्षण एकोपी न स्वर्ण न लभ्य स्वर्ण कोटि। चाण के पंडित कहते हैं आपके आयुष्य में से बीता हुआ जो एक क्षण है उसको संसार भर की सारी संपत्ति देने पर भी क्या आप उसको वापस ला सकते हो? किसी के पास है ऐसी शक्ति? ये संभव नहीं है। तो जो समय आपके हाथ से निकल चुका है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। पास्ट जो बीत गया उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो चला गया, वो तो गलती हो गई तो हो गई, अब क्या करें, वो तो हो गई। भगवान को भूल चुके तो भूल चुके, उतने समय में हमने भगवान का चिंतन नहीं किया तो नहीं किया था, अभी उसको अंडू तो नहीं कर सकते हम, वो तो हो गया, बीत गया, है ना। फिर फ्यूचर, फ्यूचर क्या हमारे हाथ में है? आप जानते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है? नहीं, वो तो नहीं जानते। 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है वो भी नहीं पता। तो जो आप जानते नहीं उसके लिए क्यों चिंता करने का? जो जानते ही नहीं उसके लिए क्यों चिंता करने? लेकिन एक चीज प्रेजेंट वो आपके पास है ना, वो आपके साथ है ना कि नहीं है? अंग्रेजी में प्रेजेंट शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है क्या? गिफ्ट है ना, प्रेजेंट शब्द का दूसरा अर्थ, प्रेजेंट दिया आपको, तो प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? गिफ्ट। तो वर्तमान जो है वो मनुष्य समाज के लिए गिफ्ट है, उपहार है। वर्तमान समय जो है वो उपहार है। उसको उपहार क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी वर्तमान का पूरा उपयोग करके आप भगवत धाम जा सकते हैं, इसी वर्तमान का पूरा उपयोग करके आप जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हो। इसलिए ये मत सोचिए कि करेंगे अभी तो बहुत दिनों, क्या बोलते हो उसको, आज करे सो कल करे, कल करे सो आज, है ना, क्या बोलते हो उसको, कल करे सो आज, आज करे सो अभी,
ये हमारा होगी बहुरी करेगा,
हाँ
कल में प्रलय होगा बहुरी करेगा।
लेकिन कई लोगों ने अभी नया सूत्र बना दिया है, बोलता है अभी करे, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतना चिंता क्यों करे जब जीना है परसों। लोग सोचते हैं इस तरह से, नया सूत्र बना दिया लोगों ने। लेकिन कौन कह सकता है इतना यकीन से कि जीना है बरसों, है ना? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता कितना। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत बड़ा आयुष्य पड़ा है। आप ये सोचिए कि जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए जुड़ जाइए भगवान की सेवा में। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको, दवाई कड़वी है लेकिन खानी पड़ेगी, लेकिन प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं अगर आप प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें सहायता दूंगा। अगर जब भगवान आपको सहायता करेंगे फिर आपको कौन, है ना, कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर कृष्णा किसी की रक्षा करेंगे उसको कोई मार सकता है क्या? हाँ मार सकता है। ये द्रौपदी बोले तुम जिसको जो करना है करो, द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं करने दिया वस्त्र हरण भगवान ने। भगवान की भक्त है वो, नहीं करने दिया। चाहे दुशासन ही क्यों ना हो जाए, कोई भी हो जाए, नहीं होने दूंगा वस्त्र हरण। जब कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं कोई इसको मार सकते है? कोई नहीं मार सकते ना। और जयद्रथ ने वरदान ले लिया था, अर्जुन ने बोल दिया था कि अगर तुम्हारा वध नहीं करेंगे रात तक शाम तक तो अग्नि समाधि दे दूंगा। तो ऐसा प्लान बनाया द्रोणाचार्य ने, 40 माइल दूर लगा दिया जयद्रथ को, अर्जुन से 40 माइल दूर जयद्रथ को, और घोड़े से जाना था अर्जुन को, भगवान घोड़े लेकर ले जा रहे थे। शाम तक पहुंचे जयद्रथ के पास, वो भी संभव था, वो कृष्ण ने सब ट्रिक बना करके ले गए ना। तो वहां पर ले गए और अंत में भगवान देखा ये युद्ध करेगा तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं होने वाला इधर, ये अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। तो फिर भगवान ने क्या किया? कुछ लोग सूर्य को ढक दिया, और सूर्य को ही ढक दिया, लोग सोचो अंधकार हो गया। जयद्रथ पास में आ गया, वो और थोड़ा पास आया, और पास आ गया, और थोड़ा पास है, भगवान ने फिर से सूर्य को ला दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है, है ना? अरे अर्जुन तुमसे युद्ध नहीं हो रहा है, तुम मत करो युद्ध, मैं युद्ध करता हूँ, तुम भीष्म को मारते क्यों नहीं इतना? जैसे ही भगवान भीष्म के सामने भगवान ने हथियार उठाया, भीष्म ने अपने हथियार रख दिए। तो भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ सकते हैं। तुम्हारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारे। लेकिन जब भगवान दुर्योधन को वध करना चाहते थे तो कोई रोक सका, है ना? बोल दिया भगवान, भीम को बोल दिया उसकी जंगा को तोड़ दे तभी ये मरेगा, बता दे। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, है ना? कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान आपको अवश्य सहाय करेंगे। लेकिन प्रयास क्या करना है हमें प्रभु, वो तो बताइए, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपको कोई बहुत यू नो पेड़ पर जाके उल्टा लटकना नहीं है, ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं करना, या कोई बहुत बड़ा बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाने का कहीं पर, वीजा के लिए आप जाते हो तो बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए करना क्या है? भगवान कलयुग के सीधा सा मार्ग बताते, हरे नाम है वो, केवल केवल हरे कृष्ण नाम मंत्र का उच्चारण करो बस। हाँ बस इतने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन हम उतने कर उतना करने के लिए भी तैयार नहीं। आप सोचिए कैसा दुर्भाग्य है हमारा, कोई आपको कहेगा प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र की माला का जप करो, माला का जप करने से क्या होता है? हमने तो हजारों लोगों को देखा जब करते हुए, हमारे घर में सारे दादी बूढ़ी सब लोग करते जब, कुछ नहीं होता। हाँ भगवान कहते हैं माला का जप करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो और परिवर्तन आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये प्रूवन है, ये जो सत्य है वो प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं। जब भगवान के नाम का उच्चारण होगा तो आपका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। अभी परिवर्तन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो ठीक है, नहीं सुधारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पुनर्भी जन्म और पुनर्भी मरण, फिर से जन्म लेना फिर से मरण। अगर आपको दुख अच्छा लगता है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से पूजा करता है। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से पूजा संकीर्तन के संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेय दर्शन संकीर्तन यज्ञ से हमें पूजा करनी चाहिए। तो करना क्या है हमें प्रयास, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम बोल रहा हूँ मैं शाम से एक माला का जप करना, कम से कम एक माला का जप तो कर ही सकते हैं, कम से कम कंफर्म कर रहा है बार बार ये आवाज दे रहा है नीचे से थोड़ी थोड़ी देर में तो कंफर्म क्या करना है हमें एक माला जप रोज प्रतिदिन। प्रभु हम एक माला तो कर रहे हैं तो फिर दो करो, अब दो माला कर रहे हो तो फिर चार करो। हम प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं और आपको भी हम 16 माला जप करने के लिए सुझाव देते हैं। अगर आज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कल करना, कल नहीं कर सकते तो परसों करो, लेकिन प्रयास शुरू करो, 16 माला रोज जप करो, एक एक करके बढ़ाओ, लेकिन रोज 16 माला का जप करना है। और साथ में क्या करना है, और कोई उपाय? हाँ है ना, उपाय है, क्या है? और भक्तों की संगत करो। आप जिसकी संगति करते हो आप उसके जैसे विचार अनुकूल करते हैं कि नहीं, है ना? जैसा संग वैसा रंग होता है ना, जिसकी संगति करोगे उसके विचार आपको बिना मांगे मिलेंगे, है ना? अपने आप उसकी सोच आपको फ्री में मिलेगी, वो जैसा सोचता है वो आप भी ऐसा सोचने लगेंगे। तो अगर आप अच्छा सोच बनाना चाहते हो तो उन लोगों के पास जाओ जिनकी सोच अच्छी है, कन्फर्म उन लोगों के पास जाओ जिनकी सोच अच्छी है। वो लोग कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों के पास जाओ, वो आपको अच्छे विचार बताएंगे। कौन से विचार? जिस विचार से आपके मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। तो भक्तों की संगति कीजिए। यहाँ पर आपके इस इलाके में एरिया में अनेक प्रकार के सत्संग कार्यक्रम होते हैं शायद, है ना? अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं इस जगह पर आसपास में। तो ये सारे सत्संग कार्यक्रम में आप जाइए नियमित रूप से, ना? पर भी टाइम कहाँ होता है, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो आपका जीवन अच्छा हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो प्रयास कीजिए, समय निकालिए, सत्संग का लाभ उठाइए। सत्संग के साथ साथ आपको जैसे ठाकुर जी का जब अभिषेक हुआ तो ठाकुर जी का जिसके घर में ठाकुर जी का फोटो या विग्रह है उनको प्रयास करना चाहिए कि भले मंदिर के स्टैंडर्ड फॉलो ना कर पाए लेकिन घर में भी कुछ स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। जैसे एक समय फिक्स करना चाहिए कि इस समय पर भगवान को उठाना है, चाहे भले आपके अनुकूल समय हो लेकिन वो समय फिक्स करना चाहिए कि इस समय आप भगवान को उठाना है, 6 बजे उठाना है, 7 बजे उठाना है, इसे फिक्स करो इस टाइम पर भगवान को उठाना है। फिर भोग लगाने का समय फिक्स कर सकते हो, कितने बजे मुझे भोग लगाना ही है ना, वो अपने इच्छा से करो लेकिन फिक्स करो। और जब भगवान ठाकुर जी घर में आते हैं तो घर आपका फिर मंदिर बन जाता है। तो मंदिर में प्रयास करना चाहिए आपको कि जो पाप के कार्य है उससे दूर रहे, पाप के कार्य से दूर रहना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और विशेष करके घर में भोग लगा के ही खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज चलेगा आज क्या देगा, सब भगवान के ना हिसाब से मैडम, सब कुछ भगवान की संपत्ति, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं, हालांकि गंगा की पूजा जानते हो कैसे होती है? गंगा की पूजा गंगा जल से ही होती है। आप गंगा जल उठा करके गंगा में वापस डालते हो, भगवान गंगा आप देखो, भगवान गंगा देवी इतने कृपालु है वो आपकी पूजा समझ लेते हैं, उनका ही पानी आप उनको वापस दे रहे हो फिर भी वो पूजा समझ लेते हैं। इस तरह से भगवान की संपत्ति सब भगवान की है, लेकिन जब भगवान को कोई देता है अपने हृदय से तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना? जैसे छोटा बच्चा होता है, पिता की जेब में से पैसा लेके खरीद के लाता है कुछ सामान और पिता को देता है आपके लिए गिफ्ट लेके आया, हालांकि वो तो होता है पिता का ही होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी बोलता है अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लाए, बिकम सो हैप्पी। तो प्रेम भगवान चाहते हैं हमसे। तो आप जो लड्डू को घर पे रखा है गोपाल को घर में, तो उनका आप अच्छे से सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए, भोग लगा के खाइए और सत्संग भी कीजिए। भगवान कई बार भगवान को भगवद गीता के श्लोक सुनना अच्छा लगता है, भगवान को श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, उनको तो सुनाओ, उनको पढ़ के सुनाओ। जब आप उनको पढ़ोगे, उनको सुनाओगे तो आप भी पढ़ोगे फिर, है ना। तो आप प्रतिदिन गीता और भागवतम को भी पढ़िए, प्रसाद खाइए, माला का जप कीजिए और भक्तों की संगति कीजिए। इतना सरल साधन चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो इसका पालन कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चन। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। नो क्वेश्चन। इसका अर्थ होता है कि आप सबको एक्सेप्ट करते हो, है ना। लास्ट में जो चार चीज हमने आपको बताई वो आप एक्सेप्ट करते हो, तो आप हम ऐसा आशा रखें फिर कि आप माला का जब शुरू करने का प्रयास करोगे आज से, नहीं प्रभु जी आज जल्दी हो जाएगा, कल करेंगे, है। और ये कल कभी आता ही नहीं है ना, कल कभी आएगा नहीं, इसलिए प्रयास कीजिए आज से। अगर आपके पास जप माला नहीं है तो डॉक्टर सच्चिदानंद प्रभु को कहिए, वो आपको जप माला अरेंज करके दे देंगे। लेकिन आप प्रयास कीजिए, जो दवाई लेगा उसको इसका इलाज होगा, जो दवाई दूसरा दवाई लेगा आपका इलाज थोड़ी होगा। तो आपको अपना प्लेन खुद चलाना पड़ेगा। तो आप माला का जप कीजिए, तो मैं ये उम्मीद रखूँ क्या कि आप रोज एक माला का जप करेंगे, कम से कम प्रयास करेंगे। कितने लोग तैयार है कि जो रोज कम से कम एक माला जप करने का प्रयास आज से शुरू करेंगे, प्रयास करेंगे? कितने लोग तैयार है, हाथ उठा सकते हैं? भूख लगी है क्या सबको? प्रसाद चाहिए? सब लोग कर रहे हैं। हाँ तो फिर उसमें ये तो कर रहे हैं तो एक हो ही गया, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हाथ उठाना ही चाहिए, उसमें क्या है? कितने लोग रोज माला का जप कर ही रहे हैं ऑलरेडी? अच्छा, कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं? हमने ये नहीं कहा से शुरू करेंगे, हाँ हमने कहा कि जो चाहते हैं ऐसा कि शुरू करें। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए समय चाहिए, 7 दिन के बाद फिर से पूछेंगे आपको कोई कि आप सोच के बताना कि आपको जब करना है कि नहीं करना है। जब करेंगे तो आपका लाभ है, आप नहीं करेंगे तो फिर आपके और पशु के जीवन में कोई फर्क नहीं है। वही पशु भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रयास कीजिए रोज हरे कृष्ण मंत्र के जप करने के लिए। अगर आपके पास भगवद गीता यथारूप है तो प्रतिदिन उसको पढ़िए, प्रयास कीजिए। हाँ, विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूढ़ लोग जो होते हैं वो ये बात इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति ही समझ सकता है। और बुद्धिशाली व्यक्ति ज्ञान चक्षु से देखता है, ज्ञान की आंखों से देखता है। और ज्ञान की आंखें कहाँ से मिलती है? भगवद गीता में से। भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो आप भगवद गीता पढ़िए, माला का जप कीजिए, प्रसाद खाइए और भक्तों की संगति कीजिए। स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।